मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 13 जुलाई 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अरविंद कुमार, आपका गांव है पदरी, जिला लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश से। कुलविंदर सिंह, आप हैं भटिंडा पंजाब से। और मोहम्मद तनवीर आलम, आपका गांव है करबला, जिला साहिबगंज झारखंड से। तो अरविंद, कुलविंदर और मोहम्मद तनवीर, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, दिन है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन मुझे आप सबको नियमित रूप से कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। तो दोस्तों, सूचना यह है कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं, जो अखबार की कतरने हैं जिनमें आप एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ते हैं, एडिटोरियल कमेंट पढ़ते हैं, वो शनिवार को आपको एज इट इज मिलेंगी। साथ ही शनिवार को आपको पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें योजना पत्रिका के 2 आर्टिकल होते हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश में, और उसी पैटर्न पर कुरुक्षेत्र के भी 2 आर्टिकल होते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम लोग एक वीकली क्वेश्चन देते हैं, जिसे साप्ताहिक प्रश्न हिंदी में आप कहते हैं, और उसका पर्पज होता है कि आप क्वेश्चंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। और क्वेश्चंस इस तरीके के ही दिए जाते हैं और ऐसे टॉपिक पर दिए जाते हैं जिनके कह लीजिए कि मेंस में पूछे जाने की थोड़ी काफी कुछ संभावना तो होती है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी टॉपिक पर आपको प्रश्न उपलब्ध करा दिए जाएं। और इसके साथ ही जो हमारे क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भी भेजा जाता है। मित्रों, इस इन सूचनाओं के बाद आज के मुख्य विषय के तहत मैं थोड़ा सा आपसे स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करना चाहूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसकी थोड़ी सी सूचना एक डेटा के रूप में मैंने आपको कल दी थी, उस पर मैं अब थोड़ी सी लंबी बात आपसे करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आज न्यूज़पेपर्स की एक क्लिपिंग्स पर आ जाता हूं। आज मैं आपको एक क्लिपिंग्स को आधार बनाकर के कुछ बातें कहना चाह रहा हूं दोस्तों, वो है छोटी बचत के ऊपर, छोटी बचत योजनाएं। छोटी बचत योजनाएं का मतलब है कि ऐसी योजनाएं जो छोटी छोटी बचत करने वाले लोगों के हित में है, कह लीजिए, या यूं भी कह लीजिए कि उनके लिए सुविधाजनक है। देखिए, जिनके पास बड़ी बड़े पैसे हैं, बड़ी रकम है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो जमीन खरीद लें, वो मकान खरीद लें, वो सोना खरीद लें। और सामान्यतः सच पूछे तो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो इन्हीं सब में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक छोटी कमाई करने वाला जो हर महीने 500 रुपए बचाता है, 1000 रुपए बचाता है, 2000 रुपए बचाता है, सवाल यह है कि वो अपने पैसे का क्या करें, राइट? तो उनके पैसे को निवेश करने के लिए सरकार ने जो संस्थाएं बना रखी हैं, जो सिस्टम बना रखे हैं, उन योजनाओं को ही, उन स्कीम्स को हम कहते हैं छोटी बचत योजनाएं। इसमें आपने एक नाम सुना होगा जो पिछले 2-3 सालों से खासकर बहुत तेजी से उभर रहा है, वो है म्यूचुअल फंड। देखिए, छोटी बचत योजनाओं में कुछ नाम तो ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं और उनके बारे में आप सब जानते भी हैं, किसान ऋण पत्र है और डाकघर बचत योजना है, सार्वजनिक भविष्य निधि है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, किसान विकास पत्र है, तो ये सुकन्या समृद्धि योजना के काफी एड भी आते हैं, ये सब नाम आपने सुने हैं। मैं स्पेशली आपको यहां थोड़ा सा जो म्यूचुअल फंड है उनके बारे में स्पेशली बताने जा रहा हूं। जो म्यूचुअल फंड है, देखिए, म्यूचुअल का मतलब है बहुत सारे, फंड यानी कि कोष, एक ऐसा कोष जिसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपस में बनाया है, आपस में मिलकर बहुत सारे लोगों ने बनाया है। आप ये कह लीजिए समझने के लिए कि यह एक प्रकार से कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसा है, जैसे कोई भी कोऑपरेटिव कारखाना खोला जाता है, जैसे आपका अमूल का ले लीजिए, तो वो कोऑपरेटिव है, बहुत से लोगों ने मिलकर के एक उद्योग स्थापित किया है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत से लोगों ने मिलकर उसे स्थापित किया है, लेकिन नाम में कुछ ऐसा जरूर है कि एक ऐसा फंड है जिसमें लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब देखिए, बैंक में भी हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, बैंक में भी हम अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक के पास पैसा आता है, ठीक है, बैंक अपने काम के लिए रिजर्व बैंक से भी धन उधार लेता है, लेकिन हम भी अपने रकम जमा करते हैं, उसको भी बैंक ऋण के रूप में दूसरों को देता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का पर्पस थोड़ा सा दूसरा है। म्यूचुअल फंड जो हमसे पैसा लेता है उसके बदले में वो शेयर खरीदने का काम करता है। मुझे उम्मीद है कि शेयर मार्केट के बारे में आप लोग जानते होंगे। अपने स्टूडेंट्स को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोग शेयर मार्केट के बारे में क्लास में चर्चा भी करते हैं। तो शेयर मार्केट में जब आप सीधे भी जा सकते हैं शेयर मार्केट में, उसके ब्रोकर होते हैं और ब्रोकर के थ्रू आप मार्केट में जाकर के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन होता यह है दोस्तों कि वो बहुत रिस्की होता है। याद रखिए कि शेयर मार्केट सबसे रिस्की क्षेत्र है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। आसान नहीं, अखबारों में आप पढ़ेंगे कि इसके इतने रेट बढ़ गए, इसके इतने रेट बढ़ गए, उसने इतना कमा लिया, उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। बहुत ही रिस्क वाला क्षेत्र है शेयर मार्केट, इसके लिए बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए। तो सवाल यह है कि सिटीजन्स तो उतने हाई लेवल की एक्सपर्टीज डेवलप नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? तो वो म्यूचुअल फंड में जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में हम जितना भी पैसा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1,000 रुपए जमा किया म्यूचुअल फंड में, तो शेयर मार्केट के लिए म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से मेरे लिए 1,000 रुपए के शेयर खरीद देगा, बस खत्म होगी बात। फिर साल भर तक वो हिसाब लगा करके मुझे बता देगा कि आपके जो 1,000 रुपए थे उसमें आपको इतने प्रतिशत फायदा हुआ है। याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि आपको फायदा ही हो, घाटा भी हो सकता है, तो आप तो उसके एक तरह से पार्टनर हो गए, उस फंड में आपने पैसा दिया है ना। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं। जैसे इस बीच में आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि इस जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने लगभग 15% प्रॉफिट दिया, यह आंकड़ा आपने पढ़ा। इसका मतलब है कि अगर मैंने 100 रुपए म्यूचुअल फंड को दिए थे तो उसके बदले में वो मुझे 115 रुपए दे रहा है, देने को तैयार है कि 15 रुपए आपके हमने कमा दिए हैं, 115 रुपए, ठीक है। इसी दौर में आप दूसरी कमाई देखिए, अगर आप इन सिस्टम में जाते हैं तो, जैसे बैंक आपको 7-8% ब्याज देती है, तो वो 100 रुपए के बदले में आपको 107-108 रुपए देगी, जबकि वो म्यूचुअल फंड 115 रुपए दे रही है। अगर आप जमीन खरीद लेते हैं तो उनके आंकड़े आ रहे हैं, अगर आप सोना खरीद लेते हैं तो उनके आंकड़े भी आ रहे हैं, तो वो भी 7-8% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहे। तो इस तरह से जो म्यूचुअल फंड है वो डबल प्रॉफिट दे रहे हैं। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि म्यूचुअल फंड पर लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ती चली जा रही है और इसमें जो जमा रकम है उसमें भी बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। मैं आपको एक आर्टिकल जयंती लाल भंडारी जी का प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें चीजें दी हुई हैं। आप पाएंगे कि इसमें एक आंकड़ा दिया कि 2011-12 में छोटी बचत योजनाओं में सभी में जो पैसा जमा हुआ था वो केवल 31 अरब रुपए था, है ना, 3100 करोड़ रुपए आप कह लीजिए, जो अब बढ़ करके 1550 करोड़ रुपए का हो गया। मतलब 31 से 1550, आप चलिए अरब रुपए को हटा दीजिए, मतलब 1550 अरब रुपए हो गया, तो अरब को हटा दीजिए, 31 का 1550 हो गया। तो मतलब छोटी बचत योजनाओं की तरफ लोगों में आकर्षण बढ़ रहा है और ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि लोग बचत करके और उन्हें मेन स्ट्रीम में डाल रहे हैं, यानी कि अपने घर में रख रहे हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो पैसा है वो मेन स्ट्रीम में एक्टिव रहे। तो जब हम बैंक में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो उससे वो पैसा एक्टिव हो जाता है, राइट। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है और बाकी इस आर्टिकल में है, आप देख लीजिएगा। वैसे ये बहुत अच्छा टॉपिक है, सरल टॉपिक भी है, प्यारा टॉपिक भी है, बहुत व्यावहारिक टॉपिक भी है। तो आपको चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानें, आगे भी आपके ये काम आएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं स्वयं सहायता समूह पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मुझे मालूम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप सबको काफी कुछ जानकारी होगी भी, क्योंकि बहुत साल हो गए भारत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो अपने ग्रामीण महिलाओं को सशक्ति एम्पावर्ड करने की कोशिश कर रहा है और इसमें उसे बहुत सफलता भी मिली है। कल के न्यूज में आपने फिर से डेटा सुना होगा कि लगभग 20 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं पूरे देश में, 20 लाख कम नहीं है, और इन समूहों में लगभग 2.25 करोड़ परिवार जुड़े हैं, 2.25 करोड़ परिवार। देखिए, यहां आंकड़ा आपको समझना होगा, परिवार का मतलब व्यक्ति नहीं होता है, यहां परिवार की 2.25 करोड़ परिवार, एक परिवार में सामान्यतया भारत में 5 लोगों को माना जाता है। तो अगर आप 2.25 में 5 का गुणा कर दे तो आप पाएंगे कि लगभग लगभग 12, मोटे तौर पर कि 12 करोड़ लोगों का जीवन इस पर आधारित है। आधारित तो चलिए न भी कहें, लेकिन उनके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और ये कम बड़ी संख्या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जुड़ने वाली है वो महिलाएं हैं। तो महिलाओं का सशक्तिकरण जो हम इसके बात करते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा उसका आधार होता है आर्थिक। जब तक हम अपनी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बनाएंगे तब तक उनका सशक्तिकरण नहीं हो सकता, और स्वयं सहायता समूह यही काम करते हैं। इसके फिर से आप शब्द को देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अगर हम उसके टाइटल पर थोड़ा सा जोर दें, ध्यान दें, तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। स्वयं सहायता समूह, पहली बात तो यह कि यह एक व्यक्ति का काम नहीं है, यह 2 व्यक्ति का काम नहीं है, यह समूह का काम है, चाहे फिर वो 5, 10, 15 कुछ भी हो, यह समूह है। तो यह समूह क्या कर रहा है? स्वयं सहायता, यह दूसरों की सहायता के लिए नहीं। एनजीओ तो देखिए दूसरों की सहायता करता है ना, यह दूसरों की सहायता नहीं कर रहा है, यह अपना हाथ जगन्नाथ की कहावत के पैटर्न पर काम करता है। हम स्वयं की सहायता करेंगे, इसका मतलब है 2 पक्ष देखिए, एक तो यह कि हम अपनी सहायता खुद करेंगे, दूसरा यह है कि हमें दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, हम खुद इतने में सक्षम हैं। तो जब ये स्वयं सहायता समूह काम करेंगे, जब अपने एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आएंगे, तो अब आप अपने दिमाग में एक मॉडल लाने की कोशिश कीजिए, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो, और अगर जानते हैं तो भी अब आप इस तरीके से सोचना शुरू करें कि फिर वो करते क्या होंगे, कैसे स्वयं सहायता करेंगे, वो अपनी सहायता खुद कैसे करेंगे। और देखिए जो स्वयं सहायता समूह है ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण और कस्बे वाले क्षेत्रों में ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको फिर कुछ थॉट्स आएंगे दिमाग में जब आप सोचेंगे, तो गांव है, चलिए अभी तो खेती बाड़ी का मौसम है तो महिलाएं खेती बाड़ी में लगी होंगी, कोई बात नहीं आप खेती बाड़ी में लग जाइए। स्वयं सहायता समूह में ये नहीं कि आपको 12 महीने काम करना है, ये डिपेंड इस बात पर करता है कि आपका समूह क्या काम करता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं कि अक्सर खेती बाड़ी हो जाने के बाद ज्यादातर समय में केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी खाली रहते, तो उस खाली समय में वो क्या करें, और बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट इस मायने को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर के है कि खाली समय में वो क्या करें। तो ये जो स्वयं सहायता समूह है ये खाली समय को अपना भर देते हैं, करते क्या है, इन सबके पास अपनी थोड़ी बहुत संसाधन अपने हैं, रिसोर्सेज हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे, तो पैसा जमा करने के बाद इनका एक थोड़ा सा कोष बन जाएगा। जैसे मान लीजिए गांव की 10 महिला इकट्ठी हो गई, उन्होंने अपना 100-100 रुपए जमा किया, तो 1000 रुपए की इनके पास पूंजी हो गई। अब ये सोचेंगे कि हमारे गांव में क्या किया जाए, तो उनको लगेगा कि यार हमारे गांव में जो है ना ये चूड़ी बिंदी सिंदूर इन सब की मांग खूब रहती है, और ये जो महिलाएं हैं वो हाट बाजार लगता है यहां से 5 किलोमीटर सप्ताह में एक दिन, तो वहां से जाकर के खरीद के लाती हैं, तो हम क्यों नहीं करें कि ये जो सामान है वो हम यहीं अपने गांव में एक छोटी सी जगह में रखने लगे, तो 1000 रुपए का अपना इस्तेमाल करेंगी, जाकर के सामान खरीद करके ले आएंगी, तो उनकी एक छोटी सी दुकान खुल गई, छोटी सी दुकान खुल गई। अब आप देखें कि ये कोऑपरेटिव बेसिस पर हो रहा है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कोऑपरेशन का ही है, सामुदायिक विकास का है आप कह लीजिए, या सहकारी तंत्र का है कह लीजिए। तो अब इसमें ये बारी बारी से अब इनका अपने एक संगठन बन गया, उसमें बकायदे एक हेड हो जाएगा, ये कैशियर हो जाएगा, बैंक में इनका बकायदे खाता खुल जाएगा, उसमें ये थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट जमा कराने लगेंगी, और फिर जो प्रॉफिट होगा उसे बांट लेंगी। अगर आपस में किसी को बीच में किसी तरह के धन की जरूरत भी हो गई तो वो अपने में से निकाल करके दे देंगी, तो इस तरह से साहूकारों के चंगुल से अपने आप को बचा लेंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जो स्वयं सहायता समूह है, यहां मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, और वो ये कि केवल आर्थिक आधार प्रदान नहीं करता, जो हम लोगों ने शुरू में कहा कि आर्थिक स्वावलंबी बनाता है, बल्कि बहुत से दूसरे गुण भी इनको प्रदान करता है। नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, आप देखिए व्यावसायिक दक्षता, अब वो बाजार जा रहे हैं, सामान ला रहे हैं, फिर यहां बेच भी रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनके स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, फिर सोशल, उनकी एक तरह से सामाजिक भूमिका भी वो निभाने लगती है, क्योंकि फिर उन लोगों को गांव वाले जानने लगते हैं, उनकी रिकॉग्निशन होने लगती है, उनमें महिलाओं में आत्मविश्वास आने लगता है, घर की आय तो बढ़ती ही बढ़ती है, तो घर का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। तो इस तरीके से केवल आर्थिक स्वावलंबन तक सीमित नहीं है स्वयं सहायता समूह, इसके बहुत से दूसरे लाभ भी हैं। तो मैंने थोड़ी सी आपको दोस्तों जानकारी दी है, बाकी आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेंस में अक्सर इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आज मैं बहुत से उपलब्ध करा रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ये सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से तीन नौजवान साथियों के नाम हैं लक्ष्मी चंद, डायमंड शिवम राय और संतोष गुप्ता। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मैं बीच के ये दो दिन आपके बहुत सुखद तरीके से व्यतीत हों इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।